Hare Krishna. आज यहाँ कई विद्यार्थी आए हैं दूसरे शहरों से। एक ग्रुप आया है एनआईटी जलंधर से, ग्रुप को आए हैं। खास स्वागत।
हरे
कृष्ण, हरे कृष्ण। मंदिर की महिमा बहुत तेजी से फैल रही है। अभी तक की इच्छा क्या की मंदिर का दर्शन। और एक और ग्रुप आया है एनआईटी जूर के लास्ट से।
Thank you.
Rama 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानमिमानस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं अनुभूतये स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपां सारदां सहना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सुभूतं राधा कांचन वाचा कल्पाचा जय श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण
लगता है ईश्वर भक्तों की सभा है, यहाँ तक हरि नाम का उच्चारण रोकना ही नहीं चाहते। ये बड़ी अच्छी बात है, शास्त्र में कहा गया है कि हमें 24 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण करना है। तो आप ऐसे कितने भक्त हो जो भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? सब। तो थोड़ी देर में हम बताएंगे आपको अब भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हो। उससे पहले संक्षेप में भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाएंगे, ठीक है। असल में इस पेशे पर कई लीलाएं हैं, पर मैं संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। हम एक और प्रिय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप भगवान के प्रिय बन सकते हो। और आप सब ने हाथ उठाकर कहा अब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, है कि नहीं? हजारों हजार साल पूर्व एक बड़े धार्मिक राजा थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। बड़े धार्मिक थे, राजा थे, पर उनका भाव दिन रात था कृष्ण की सेवा। आजकल के राजनीतिक नेताओं जैसे नहीं जो भगवान का सोचते ही नहीं, तो यही सोचते हैं कैसे जेब भरा जाए, है ना। पर प्राचीन समय में कई प्रसिद्ध राजा हुए हैं जो कि राजा भी थे और ऋषि भी, जैसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज, महाराज अमरीश और भगवान राम। आज भी हम राम राज्य का स्मरण करते हैं, कि नहीं? क्यों? क्योंकि राम राज्य के समय समाज में केवल सुख ही सुख था, और आज समाज में क्या है? दुख ही दुख। जहां भी आओ जाओ आप सोचते हो गए नहीं केवल बॉम्बे में दुख है, विदेशों में तो सुख ही सुख है, पर विश्व के किसी कोने में जाओ क्या अनुभव है? दुख ही दुख। तो ये महाराज इंद्रद्युम्न बड़े धार्मिक थे, दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, विष्णु को प्रसन्न कैसे किया जाए। ये भाव हम सब में होना चाहिए, कि नहीं? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम इसे कैसे प्राप्त करें। जो भक्त है वो सोचता है भगवान को क्या चाहिए, और भगवान की इच्छा हमारी इच्छा, ये नहीं हमारी इच्छा भगवान की इच्छा। तो महाराज इंद्रद्युम्न संतों की बकायदा सेवा करते थे। एक दिन एक महान संत आया, एक साधु आए उनके घर में, उनके महल में। और एक साधु, उस साधु ने कहा कि आप विश्वास नहीं करोगे, भगवान प्रकट हुए हैं नील माधव के रूप में, और ये जो नील माधव की मूर्ति है इतनी खूबसूरत है, क्या आप देखोगे तो आपका हृदय संतुष्ट हो जाएगा। और ये कहकर वो चल पड़ा। भगवान के विग्रह, भगवान अपने आप को आचर विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे आपके मीरा रोड के मंदिर में भगवान प्रकट हुए हैं श्री श्री राधा गिरधारी के रूप में, और श्री जगन्नाथ वल्लभ और गोनेताई भी हैं। तो आपके नए मंदिर में बड़े सुंदर गोनेताई बने हैं और इन मूर्तियों की स्थापना होगी। तो भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, क्यों? कि हम उनकी सेवा में जुड़ सकें, हम उनके लिए कुछ सेवा, उनका उनके चरण कमलों का चिंतन कर सकें। और भगवान को निराकार रूप में भी आप पूज सकते हो, साकार रूप में पूजना अलग ऊंचा भाव है। तो और मूर्ति आचार्य मूर्तियों में दो प्रकार की होती हैं, एक है सेल्फ मैनिफेस्टेड, जो स्वयं प्रकट हुई है, जैसे बालाजी मूर्ति तिरुपति में क्या कहा जाता है, उस सेल्फ मैनिफेस्टेड है, खुद प्रकट हुई है। हाँ, श्रीनाथ जी मूर्ति, दैट ऑल्सो सेल्फ मैनिफेस्टेड। और दूसरा है जो बनती हैं हमारे शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार, और फिर प्रमाणिक गुरु के सहयोग से और मंत्रों के उच्चारण से उनकी स्थापना की जाती है। आपके मीरा रोड मंदिर में जो मूर्तियां हैं, ये स्वयं प्रकट नहीं हुई थी, इन्हें बनाया था, इनकी स्थापना हुई है शास्त्रों की विधियों के अनुसार। जब इनकी स्थापना हो जाता है तो फिर इनमें और स्वयं प्रकट मूर्तियों में अंतर नहीं होता। भगवान, आखिर भगवान अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। तो नील इस ब्राह्मण ने आके कहा कि भगवान की एक मूर्ति, भगवान प्रकट हुए हैं नील माधव के रूप में। पर उसने ये नहीं कहा कहां नील माधव की मूर्ति है, कौन से स्थान में, कौन से मंदिर में, और वो चल पड़ा। तो राजा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, ये नील माधव का दर्शन मुझे लेना ही चाहिए। पर समस्या क्या थी, उसे पता नहीं था नील माधव है कहाँ। अगर आपको कोई कह दे राधा गिरधारी जी बॉम्बे में है, आपको कहाँ है बॉम्बे में दर्शन। तो राजा ने अपने ब्राह्मणों को भेजा विश्व के हर कोने में, क्योंकि उन दिन में एक राज्य था पूरे विश्व का, और पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। और उन्हें कहा कि जाकर ढूंढो नील माधव कहाँ है, मैं उन नील माधव का दर्शन लेना चाहता हूं। सुब्रह्मण्य राजा के प्रतिनिधि ब्राह्मण कोई उत्तर की ओर गया, कोई पश्चिम की ओर गया, कोई चारों ओर सब गए। वो सारे ब्राह्मण घर घर जा रहे थे, पूछ रहे थे लोगों से, आपने क्या नील माधव विग्रह का के बारे में सुना है, आप में से किसी ने नील माधव का दर्शन लिया है। और सारे ब्राह्मण लौट गए, नहीं हमने तो नील माधव का नाम भी नहीं सुना, दर्शन की बात ही छोड़ो। तो सारे ब्राह्मणों ने आकर राजा को सूचना दी कि हमने बड़ा प्रयास किया पर हमें नील माधव का दर्शन मिला ही नहीं, और किसी व्यक्ति को ये सूचना नहीं है कि नील माधव कहाँ है। एक ब्राह्मण नहीं लौटा, उसका नाम था विद्यापति। विद्यापति ने कहा मैं और गहराई से ढूंढूंगा भगवान को, नील माधव को। तो जंगल में रहने लगा, और उस जंगल में एक कोम थी जो कि पशुओं की देखभाल करते थे, सुअर वगैरह के, बिल्कुल नीची जाति के लोग थे। पर उनका जो मुख्य था उसका नाम था विश्वासु, वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, और दिन रात विश्वासों के मन में यही भाव रहता था भगवान की सेवा। तो विद्यापति जंगल में रह रहा था और विश्वासों से उसका परिचय हुआ, और विश्वासों के साथ, विश्वासों की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता, उससे भी उसका परिचय हुआ। विद्यापति ने देखा कि ललिता में एक अनेक आध्यात्मिक गुण है। विश्वास था ऊंची जाति का ब्राह्मण, ललिता थी नीची जाति की, पर विद्यापति ने यह नहीं देखा कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है। उसने केवल यही देखा कौन कृष्णा का भक्त है, किसमें क्या आध्यात्मिक गुण है। तो उसने देखा कि ललिता में अनेक आध्यात्मिक गुण हैं, और विश्वासों की आज के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हो गया। किसका? विद्यापति और ललिता का। तो विद्यापति, ललिता और विश्वासु एक ही घर में निवास कर रहे थे, जंगल में जहां कोई नजर नहीं आता था। विद्यापति ने देखा कि विश्वासु, उनका ससुर, ससुर बोलेंगे ना, उनका ससुर रोज दोपहर को छू मंत्र हो जाता, चले जाता है, और फिर कई बार एक दिन, कई बार दो दो दिन बाद लौटता है। और जब वो लौटता है तो उसके शरीर से इतनी खुशबू आती है कि ऐसे लगता है वो स्वर्ग से आ रहा है। तो विद्यापति ब्राह्मण था, उसने ये अनुभव किया कि रोज दोपहर को विश्वासु गैप हो जाता है, तो पूरी रात नहीं आता, कई बार अगले दिन, कई बार दो दो दिन बाद वापस लौटता है। तो विद्यापति ने ललिता से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं, पूरी रात नहीं आते, वो जब लौटते हैं उनके शरीर से ऐसी खुशबू आती है जैसे लगता है वो स्वर्ग से आ रहे हैं। तो पहले तो ललिता ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती मेरे पिता कहाँ जाते हैं, मेरे पिता ने खास वचन लिया है मेरे से कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी वो कहाँ जाते हैं। विद्यापति ने कहा, मैं तो तुम्हारा पति हूं, मैं से क्या छुपाना चाहते हैं, बताओ कहाँ जाते हैं तुम्हारे पिता। तो ललिता ने कहा, जंगल की गहराई में एक नील माधव की मूर्ति है और वो मूर्ति किसी को नहीं पता विश्व में कहाँ है, सिर्फ मेरे पिता को पता है और मेरे पिता उस मूर्ति के पुजारी हैं, रोज जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो जब विद्यापति ने नील माधव नाम सुना, उसका हृदय इतना प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो निकला था राजा के आदेश के अनुसार क्या करने के लिए, नील माधव को खोजने के लिए। तो बड़ा खुश हो गया, यही सोच रहा था कि मैं राजा को जाकर सूचना दूंगा कि नील माधव को मैंने खोज लिया, राजा कितना खुश होगा। पर फिर उसने आगे पूछा ललिता से, कहाँ है नील माधव? तो ललिता ने कहा, जंगल की गहराई में। मैं उधर जा सकता हूं दर्शन लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, मेरे पिता कभी नहीं किसी को ले जाएंगे वहां, अकेले उनकी सेवा करना चाहते हैं। पर विद्यापति ने कहा, पिता से मेरी सिफारिश करो, मैं जाना चाहता हूं नील माधव का दर्शन लेने के लिए। तो बेटी गई अपने बाप के पास, विश्वासु के पास, ललिता, कहने लगी, मेरा पति विद्यापति जगन नील माधव का दर्शन लेना चाहता है, आपके साथ वो जा सकता है नील माधव के दर्शन के लिए? और विश्वास ने कहा, किसी हालत में नहीं जा सकता, मैंने किसी को नहीं बताना कहाँ है नील माधव, अगर विद्यापति को बता दिया और राजा को बता दिया नील माधव कहाँ है तो मेरी सेवा खत्म हो जाएगी, राजा नील माधव के लिए महल का मंदिर, बड़ा मंदिर बनाएगा और मैं नीची जाति का, मुझे अंदर भी आने कोई नहीं रहेगा, मैं किसी को नहीं बता सकता कहाँ है नील माधव। फिर ललिता ने फिर कहा, पर मेरे पति में बड़ी जिज्ञासा है नील माधव का दर्शन लेने के लिए, उन्हें ले जाओ तो विश्वासी ने कहा ठीक है ले जाऊंगा पर एक शर्त पर, तुम्हारे पति की आंखों पर मैं पट्टी लगा दूंगा। तो पट्टी लगा दूंगा और तो उसे पता नहीं रहेगा कि हम कौन से रास्ते से नील माधव के पास जा रहे हैं। और जब हम नील माधव के पास पहुंचेंगे तो मैं पट्टी खोल दूंगा। तो ललित ने कहा ठीक है मंजूर एग्रीड। तो ललित ने क्या किया मास्टर जी सरसों के सीन में, तो ललिता ने सरसों के बीज एक कागज एक कपड़े में लप लिया और इसके पति के धोती के साथ जोड़ दिया। तो विश्वासों को पता नहीं लगे कि सरसों के बीज उनके दामाद के धोती में छुपे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, जिस रास्ते से वो जा रहे थे नील माधव की तरफ वहां पूरे रास्ते में सरसों के बीज वो फेंकते जा रहे थे, इस भावना से कि निशाना रहेगा कौन से रास्ते से नील माधव के पास पहुंचे हैं तो बाद में वो जा सकते हैं नील माधव का दर्शन लेने के लिए। तो जब वो नील माधव के पास पहुंचे तो विश्वासु ने आंख की पट्टी खोल दी और जो पट्टी खोली तो विद्यापति ने नील माधव का दर्शन प्राप्त। जब उन्हें नील माधव का दर्शन प्राप्त हुआ इतना आनंद आया क्या आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और विद्यापति कहने लगा उस ब्राह्मण ने सच कहा था, अगर किसी प्रकार से किसी को नील माधव का दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसके अधिक आनंद आएगा। और विश्वासु ने क्या किया, विद्यापति को छोड़ दिया नील माधव के सामने, वो जंगल में गए भगवान की नील माधव की सेवा के लिए। क्या करते थे विश्वासु, जब वो जंगल में जाते थे तो विश्वासु सबसे पहले जंगल में जाकर फूलों से एक हार बनाते थे नील माधव के लिए। फिर विश्वासु जंगल में फल इकट्ठे करता था, फल से भगवान को भोग लगाता था। और फिर एक तालाब था नील माधव की विग्रह के सामने छोटा सा, वहां से जल लेकर नील माधव का रोज अभिषेक भी करता था। और फिर मसाज, आप रोज स्नान करते हो नहीं, फ्रांस में लोग हफ्ते में एक बार स्नान कर लें तो बड़ा भाग्यवान मानते हैं। तो आलोक स्नान, तो जैसे आप स्नान करते हो रोज भगवान भी स्नान करते हैं, आपको शायद पता नहीं। हम सुबह रोज भगवान का स्नान करवाते हैं और फिर भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं, हार आदि पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। आप तो दिन में कितनी दफा खाते हो, आप 2-3-4? भगवान तो दिन में 7 बार खाते हैं और जगन्नाथपुरी में 56 बार खाते हैं। भगवान के लिए हर कार्य असंभव है। तो नील माधव की सेवा कौन कर रहा था, विश्वास हो, फल जंगल से तोड़ता था भगवान के लिए, फल अर्पण भोग अर्पण करने के लिए अभिषेक करता था, तालाब का पानी लेकर उनका स्नान करता था, फिर तेल से उनको मसाज करता था। तो विद्यापति ने देखा कि विश्वास में कैसी सेवा भावना है, अकेले इतने सालों से नील माधव का की सेवा करते आए, अकेले सारा भोग अकेले बनाना, श्रृंगार मसाज करना, अभिषेक करना, फिर फूल इकट्ठा करके हार बनाना, फिर फल लेना, फल को काटना, ये का एहसान काम है नहीं। और उस नील माधव के विग्रह के सामने एक छोटा सा तालाब था, वो तालाब के ऊपर साइड में एक पेड़ था जिसमें एक कौवा बैठा हुआ था। और जय श्री श्री राधा केदारे की। अभी भगवान के सोने की तैयारी हो रही है, 9 बजे तक भगवान पूरा विश्राम कर लेंगे। तो तालाब था जिसके एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा था। तो विद्यापति ने देखा वो कौवा, नींद आ गई उसे, झाड़ी के ऊपर बैठा था और तालाब में गिर गया और मर गया। और मरते ही उसने एक दिव्य रूप प्राप्त कर लिया वही कुंतक का, और सबके और विद्यापति के समक्ष वो दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के धाम लौट गया। तो विद्यापति सोचने लगा, अगर ये कौवा इस तालाब में गिरकर वैकुंठ रूप प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है तो मैं क्यों नहीं आत्महत्या कर लूं इस तालाब में, आखिर भौतिक संसार में है क्या, सुख है या दुख है?
दुख है,
पर बॉम्बे में सुख है लगता है नहीं, दुख है, चारों तरफ दुख है, चिंता है, तनाव है, समस्या है, सच। तो विद्यापति सोच रहा था ये बहुत एक संसार में कष्ट ही कष्ट है, एक समस्या हल होती है अगली समस्या सामने आ जाती है, वो हल होती है फिर आगे दूसरी समस्या आ जाती है। तो विश्व विद्यापति सोचा था अगर इस कव्य को ये दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे भी प्राप्त होगा। वो सोचा था ये तालाब का पानी में खा सकती है तो आत्महत्या करने की सोच रहा था उस जल में। तो फिर एक दिव्य वाणी ने कहा, विद्यापति तुम डरपोक क्यों बन रहे हो, आत्महत्या करने का क्यों सोच रहे हो? तो महल से निकले थे एक खास उद्देश्य के साथ, वो था कि नील माधव को ढूंढना है। और अब तुमने पता लगा लिया नील माधव कहाँ है, तो आत्महत्या की बजाय लौटो तुम अपने राजा के पास और राजा को सूचना दो कि तुमने नील माधव को खोज लिया है, इसके द्वारा राजा अत्यंत प्रसन्न होगा। तो विद्यापति ने आत्महत्या की भावना छोड़ दी। तो विश्वासु जो था उनका ससुर, उसे डर आ गया, उसके मन में भय आ गया, ये विद्यापति कहीं जाकर राजा को बोल नहीं दे कि नील माधव कहां है, क्योंकि अगर बोल देगा तो राजा तो नील माधव के लिए बहुत अच्छा मंदिर बना देगा और उस मंदिर में मुझे जाने का अधिकार भी नहीं होगा, मैं निजी जाति का हूं। जैसे भारत के कई मंदिर थे और शायद आज भी हैं जहाँ की निजी जाति के लोगों को नहीं जाने देते, विदेशियों को नहीं जाने देते। हमारे गुरु महाराज ने इस भाव का बहुत विरोध किया। गुरु महाराज हमारे शास्त्रों के अनुसार निजी जाति का वो व्यक्ति है जो भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता, ऊंची जाति का वो है जो कि भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना चाहता है। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, चाहे आपका जन्म हुआ हो नीची जाति में, आप सब हो ऊंची जाति के, क्योंकि आप हो भगवान के भक्त। और इस मंदिर में अक्सर वही आते हैं जिनकी भक्ति योग में रुचि है। तो विश्वासु ने विद्यापति को गिरफ्तार कर लिया। विद्यापति कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने नील माधव का दर्शन प्राप्त किया है। तो विद्यापति फिर लौटा और राजा के पास गया। राजा को बोला, राजा आई गुड न्यूज फॉर यू, मैंने पता लगा लिया है नील माधव कहाँ है, और सरसों बीज उसने रास्ते में फेंके हुए थे जो असल से उग गए झाड़ छोटे पेड़ों के रूप में, तो नील माधव का पहुंचने का रास्ता इससे पता है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने सुना कि विद्यापति ने ढूंढ लिया है नील माधव को। तो राजा ने कहा मुझे ले चलो नील माधव का दर्शन लेने के लिए। तो राजा अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा विद्यापति के साथ, कहां कहां पहुंचने के लिए, नील माधव के दर्शन के लिए। और वो पहुंच गए वहां जहां की नील माधव प्रकट हुए थे। पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नील माधव है ही नहीं, अप्रकट हो गए। राजा ने कहा ये क्या बदमाशी, तुमने मुझे कहा कि इधर नील माधव होंगे, अभी हम आए हैं इधर। तो उन्हें विश्वासों को गिरफ्तार कर लिया राजा की सेना ने, बताओ कहां छुपाया है तुमने नील माधव को। विश्वासों ने कहा कि मैं खुद नहीं जानता नील माधव कहां अब प्रकट हो गए हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो राजा के मन में शोक उदासी थी। राजा सोचने लगा ये मेरे पापों का परिणाम है, जो भगवान के भक्त हैं वो किसी को दोष नहीं देते। वैसे तो हम एक दूसरे को दोष देते रहते ना, तुम्हारे कारण तुमने ये किया, पर जो शुद्ध भक्त हैं वो किसी को दोष नहीं देते अपनी समस्याओं के लिए, अपने आप को दोष देते, यही सोचते हैं कि मुझे तो हजार गुना गहरा परिणाम भुगतना चाहिए था, पर भगवान की असीम कृपा से बड़ा थोड़ा कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो राजा ने सोचा मैं व्रत रखूं मृत्यु तक, क्योंकि नील माधव कहाँ है वो पता भी लगा लिया, अब जब दर्शन के लिए आए तो नील माधव का दर्शन ही प्राप्त किया। फिर एक देवी वाणी द्वारा सूचना पहुंची, देवी वाणी द्वारा ये कहा गया, नील माधव ने कहा अब मैं नील माधव के रूप में अप्रकट हो गया हूं, अब मैं प्रकट होऊंगा एक लकड़ी के रूप में, दारु ब्रह्मा के रूप में। और ये दारु ब्रह्मा की मूर्ति बनेगी इस खास लकड़ी के टुकड़े से, जिसमें विष्णु के चरण कमलों के निशाने होंगे, और इसको आप प्राप्त कर सकोगे इस तालाब में। हाँ उधर जाओ वो लकड़ी को उठाना और रूप बनाना भगवान का। तो राजा फिर लौटा सेना के साथ, उस स्थान में पहुंच गए यहाँ की दिव्य वाणी ने सूचना दी थी, क्या जो लकड़ी का टुकड़ा उससे मेरा रूप बनेगा वो काम होगा, तैर रहा होगा इस दरिया में। जब वो वापस लौटे उस दरिया में, पहले तो राजा ने प्रयास किया उस लकड़ी को टुकड़े को उठाने के लिए, वो टुकड़ा इतना भारी था कि वो हाथ नहीं लगा सके, बिल्कुल नहीं हिला वो टुकड़ा। फिर राजा ने अपनी सेना को कहा तुम उठाओ, पूरी सेना ने प्रयास किया वो लकड़ी के टुकड़े को उठाने के लिए, वो हिला नहीं सके, एक इंच भी हिला नहीं। तो राजा फिर उदास हो गया। राजा ने कहा अब मौका था नील माधव का दर्शन प्राप्त करना मूर्ति के रूप में, फिर मूर्ति हिल रही नहीं है, हम उठा ही नहीं सकते। तो राजा ने फिर सोचा, राजा का इतना स्नेह था नील माधव के लिए कि राजा ने फिर सोचा मुझे शरीर त्यागने दो, क्या फैस। नील माधव के पास गए वहां दर्शन नहीं मिला, आप यहां आए हैं तो लकड़ी का टुकड़ा हिल रहा ही नहीं है। तो जब राजा इस प्रकार से शोक में था दुख में था, तो उन्हें फिर दिव्य वाणी द्वारा संदेश मिला। दिव्य वाणी द्वारा नील माधव ने कहा अगर तुम इस लकड़ी के टुकड़े को उठाना चाहते हो तो मेरे दो प्रिय भक्त जो मेरी सेवा कर रहे थे इतने सालों के लिए उन्हें बुलाओ। वो दो सेवक कौन थे? विश्वासु और विद्यापति। विश्वासु तो इतने सालों से नील माधव की सेवा कर रहा था, कहाँ? जंगल में। फिर राजा ने इन दो भक्तों को बुलाया, एक सोने का रथ तैयार करवाया, कीर्त पार्टी तैयार करवाई, और जैसे ही विश्वासु और विद्यापति आए, बड़ी सरलता से उन्होंने क्या किया? बड़ी सरलता से उस लकड़ी के टुकड़े को उठा लिया और फिर इस लकड़ी के टुकड़े को महल में ले गए, अपने महल में ले गए। और राजा ने कई कारीगरों को बुलाया और कहा, इस लकड़ी के टुकड़े से भगवान का रूप बनाई है। कई बड़े बड़े कारीगर क्राफ्टमैन आए, पर जैसे ही उनका हथियार था लकड़ी को, हथियार ही टूट जाता था। तो राजा फिर उदास हो गया, लकड़ी का टुकड़ा भी घर में आ गया है पर कोई भगवान का रूप बना ही नहीं सकता। फिर भगवान स्वयं आए विश्वकर्मा के रूप में। विश्वकर्मा कौन है? बहुत बड़े कारीगर जो देवताओं के महल बनाते हैं। और विश्वकर्मा आए महल में, विश्वकर्मा ने बुरे व्यक्ति का रूप धारण किया था और वो आए और विश्वकर्मा ने कहा, ठीक है, मैं लकड़ी के टुकड़े से भगवान का रूप बनाऊंगा, पर एक शर्त पर, 21 दिन के लिए किसी ने अंदर नहीं आना, कोई भी अंदर आएगा तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा। राजा ने कहा, मंजूर, वी एक्सेप्ट योर कंडीशन। तो विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद करके टिक 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 करके काम शुरू किया। ये जो टिक 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 है, राजा क्या कर रहा था? राजा आगे बैठ गया था दीवार के सामने कानों को जोड़कर, और ये टिक 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 सुन रहा था। और ये टिक 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 सुन रहा था तो उसको क्या लग रहा था? कीर्तन हो रहा है। जब हमारा बॉम्बे का मंदिर बन रहा था, जू का मंदिर, तो समाप्ति से पहले प्रभुपाद जी आए थे वहाँ रहने के लिए। वो प्रभुपाद जी का निवास स्थान था गेस्ट हाउस के 5वीं मंजिल में। वो नीचे काम हो रहा था, टिक 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 टिक, उस वक्त मंदिर बन रहा था, बना नहीं था पूरा। तो प्रभुपाद ने कहा, दिस टिक 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 इज कीर्तन, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल। आपका ये जो मीना रोड मंदिर बन रहा है, यहाँ भी सारा दिन टिक 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 आता है। तो टिक टिक है भक्तों के लिए कीर्तन, क्योंकि यहाँ तो ये टिक 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 हो रहा है किस लिए? भगवान का मंदिर बन रहा है ना। अगर आप मायापुर जाओ तो वहाँ ये बड़ा मंदिर बन रहा है। आप गए हो मायापुर? तो 24 घंटे आवाज आती थी, पर भक्तों को इससे बड़ा आनंद आता है। ये टिक 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 है कीर्तन। तो राजा ने जब सुना ठीक 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 ठीक, उसका हृदय आनंद से भर गया, क्योंकि उसने सोचा अब भगवान का रूप बन रहा है और मैं नील माधव का दर्शन प्राप्त करूंगा इस दारू ब्रह्मा के रूप में। पर फिर 2 हफ्ते बाद टिक टिक आवाज आनी बंद हो गई और राजा घबरा गया। राजा ने कहा, टिक टिक आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? गुंडीचा राजा की पत्नी थी, उसने कहा, कहीं वो मर तो नहीं गया वो बूढ़ा आदमी? हमने 2 हफ्ते से उसे जल नहीं दिया, खाने को कुछ नहीं दिया, शायद मर गया हो। फिर राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह ली, क्या करना चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि विश्व का मैंने पहले ही कह दिया अंदर नहीं आओगे तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा। तो मंजन का नहीं 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 अंदर मत जाओ, फिर जाओगे तो वो अप्रकट हो जाएगा। और गुनीचा के कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया, और जब खोला तो उसने देखा उस लकड़ी के टुकड़े से कौन सा रूप बन गया था, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का रूप, और विश्वकर्मा अप्रकट हो गया। तो शुरू में राजा के हृदय में शोक था, मैं अंदर क्यों आया, मुझे और एक हफ्ता राह देखना चाहिए था, क्योंकि जब आप भगवान का रूप देखो तो ऐसे लगता है ये रूप अधूरा है। आप तो भक्त हो, रोज जगन्नाथ जी का दर्शन लेते तो आप समझ गए हो भगवान के रूप को, तो अगर कोई नया व्यक्ति देखे तो कहेगा क्या यह रूप अधूरा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। जगन्नाथ जी के पैर नहीं है, पर अभी भी सारे विश्व में घूमते हैं, है ना, रथ यात्रा के माध्यम से। आज इस्कॉन के द्वारा लगभग हर हफ्ते किसी न किसी शहर में रथ यात्रा हो रही है। मैं तो केवल भारत की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह 3 दिन रथ की यात्रा निकलती है, और उन देशों की सबसे प्रसिद्ध गली से, जैसे न्यूयॉर्क की सबसे महंगी गली है 5th Avenue, तो सब बड़ी दुकानें वहाँ हैं, तो 5th Avenue में इस्कॉन की रथ यात्रा 25 सालों से निकल रही है। और लंदन में रथ यात्रा निकलती है पिकाडिली सर्कस के सामने से, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से, पर ये हमें एतवार को निकालना पड़ता है, क्योंकि दूसरे दिनों में इजाजत नहीं देंगे एतवार को सब। तो राजा के मन में शोक था कि मैं अंदर आ गया, जल्दी आ गया। तो फिर नारद मुनि वहां पहुंचे, नारद मुनि हमेशा ठीक समय पहुंच जाते हैं हर स्थान में, है ना, और उनके पास सब सूचना रहती है। तो नारद मुनि ने कहा घबराओ मत, ये रूप प्रमाणिक है, और भगवान की इच्छा थी कि तुम अंदर आओ, और ये रूप ऐतिहासिक है। और फिर इस रूप की स्थापना की गई थी जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो ये था संक्षेप में जगन्नाथ जी की कथा कि नील माधव कैसे बन गए जगन्नाथ जी। तो आपके मंदिर में जगन्नाथ जी की रोज पूजा होती है, तो मैंने सोचा संक्षेप में, ये काफी लंबी कथा है, हमने केवल मेन पॉइंट्स बताए हैं। तो जैसे मैंने पहले पूछा था भक्तों से कौन कौन भगवान के प्रिय बनना चाहता है, उस सब ने हाथ उठा दिया था। तो अगला प्रश्न इसके साथ यह है, आप कॉम्प्लीमेंट्री पास चाहते हो या मेहनत करके प्रिय बनना चाहते हो? कॉम्प्लीमेंट्री पास समझते हो क्या है? मुफ्त में स्वामी जी का आशीर्वाद मिल गया और हम भगवान के प्रिय बन गए, या आपको त्याग करके प्रिय बनना चाहते हो? कैसे त्याग? कई संत महात्मा कहते हैं आशीर्वाद लो, चंदा दो, वो लोग सोचते हैं बस सफलता प्राप्त हो गई, पर भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज ममैकं शरणं व्रज, है ना, अंत अंत सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा सुजा। भगवान कहते हैं अगर तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओगे तो ही मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा। भगवान ये नहीं कहते जो करना है करो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, है ना, भगवान ने स्पष्ट कहा अगर तुम मेरी शरण में आओगे, मेरी शिक्षा का पालन करोगे। तो भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, याइदं परमं गुह्यं, कौन है सब भक्तों में कौन है सबसे प्रिय, जो मेरा, आप लोगों को पता ही नहीं, जो मेरा प्रचार करता है। लगता है आप लोग गीता पढ़ते नहीं हो। भगवान कहते हैं जो मेरा प्रचार करता है वो क्या है, सबसे प्रिय। उससे ज्यादा प्रिय ना कर हुआ है ना ना होगा। तो कई बार भक्त पूछते हैं महाराज भगवान के प्रिय बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में शॉर्टकट चाहिए है ना। आजकल तो इंस्टेंट जमाना है, इंस्टेंट चाय, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट। तो पूछते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान के प्रिय बनने का? तो ये है शॉर्टकट, भगवान के संदेश का प्रचार करो। तो भगवान कहते हैं वो सबसे प्रिय भक्त है तो दूसरों को जोड़ता है मेरी सेवा में। भगवान ईश्वरदेव भागवत धर्म के पांचवें स्कंद में कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखकर चुप नहीं रहता। वो क्या सोचता है, मुझे इसे जोड़ने दो, क्या ठीक रहा सीधे रास्ते में। तो हमारे शास्त्र में प्रचार के सेवक पर बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान निराश और बेचैन है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई बच्चे घर से निकल जाए तो माता पिता को चिंता हो जाती है ना, तो इसी प्रकार परम भगवान अत्यंत चिंता में है। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए। हरिदास ठाकुर सबसे ऊंची जाति के ऊंचे भक्त थे, पर क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, कभी भी उन्होंने जंगलपुरी मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु खुद आते थे उनकी कुटिया में रोज उनका दर्शन लेने के लिए, और उनके सेक्रेटरी गोविंद रोज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ला कर देते थे। किसे? हरिदास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन गए हरिदास के पास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास बताओ मैं चिंता में हूं, कैसे इन नचों और यावनों का उद्धार होगा। नच और यावन किसे कहते हैं? जो कि वैदिक संस्कृति के विपरीत कार्य करता है। तो हरिदास ने कहा हे मेरे प्रभु अब चिंता मत करो, हा राम बाली कहे नाम बात है, लोग अपराधों से रहित भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे और इसके द्वारा वो भगवान के धाम लौट सकेंगे। तो भगवान ने अनेक स्थानों में ये स्पष्ट समझाया है कि उनकी इच्छा क्या है, हम सब उनके धाम में लौटें। क्यों? क्योंकि बौद्ध संसार में क्लेश ही क्लेश है। ये तो एक बड़ा जेल खाना है या नहीं? कई बार आप शास्त्र में नरक के बारे में पढ़ते हो, भागवत के पांचवें स्कंद में हेवनी प्लैनेट और हेलिश प्लैनेट का वर्णन है, नरक और स्वर्ग। तो अगर आप बॉम्बे जैसे शहर में रहो और सड़कों में घूमो, उसमें और नरक में खास अंतर है? लगता तो नहीं, नहीं। तो हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि हर जगह क्लेश क्लेश है। तो इसलिए हमारे भक्त सारे विश्व में प्रचार के सेवा में जुड़ते हैं। और जैसे आप जानते हो इस महीने के 23 तारीख को क्या है? हाँ, तो गीता जयंती के उपलक्ष असल में गीता का संदेश सनातन है। खैर जब तो गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं क्या ये संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। क्यों? गीता में है भगवान की वाणी, भगवान का संदेश, श्री भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? उपदेश, जिसके द्वारा हम अपने दुखी जीवन को सुखी बना सकें। हमारे परम गुरु जी कहते थे अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो एक ही विषय की कमी है, वो क्या है, ये दिव्य ज्ञान की कमी है। तो और शास्त्र ये कहा गया है, ऊंचे कोटि का भक्त वो है जो करना चाहता है जो भगवान की इच्छा हो। तो जैसे आप जानते हो इस्कॉन संस्था में प्रचार का उत्साह है। श्रील प्रभुपाद जी ने 1965 में पहले केंद्र की स्थापना की थी, कहाँ कहाँ, न्यूयॉर्क में। और आज प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से 500 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में। और ये जो भगवद गीता यथा रूप है, इसका अनुवाद 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो गया है ये भगवद गीता का। और पिछले हफ्ते हमने ये भगवद गीता छापी है 71st ट्रांसलेशन लैंग्वेज में, वो थी पंजाबी भाषा। तो 70 से अधिक भाषाओं में लोग इस गीता को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिव्य ज्ञान है और इस ज्ञान के सहयोग से हमारा जीवन बदल सकता है। एक भक्त था जिसने 20 साल पहले यह भगवद गीता खरीदी थी। 20 साल पहले, 20 साल तक उसने ये गीता खोली भी नहीं, जैसे खरीदा अपनी लाइब्रेरी में रख दिया। 20 साल बाद कुछ दुर्घटना बीती, वो बहुत उदास था, दुखी था, शोक में था। तो उसने सोचा मुझे गीता पढ़ने दो। जब उसने गीता पढ़ना आरंभ किया उसे लगा कि ये है भगवान का संदेश, भगवान ये उपदेश दे रहे हैं मुझे। आप गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये संदेश आपके लिए है। जब आप पढ़ोगे अर्जुन के प्रश्न तो आपको लगेगा ओ अर्जुन ने वही प्रश्न पूछे जो हम पूछना चाहते हैं। हाँ, अर्जुन ने आपकी तरफ से सारे प्रश्न भगवान से पूछ लिए हैं। तो वो ये दुखी व्यक्ति ने गीता पढ़ना आरंभ किया। और जब गीता पढ़ना आरंभ किया तो उसे ऐसे लगा कि संदेश उसके लिए है। उदासी शोक समाप्त हो गई, वो फिर से संतुष्ट हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते थे भगवद गीता इज टाइम बॉम्ब, जैसे उग्रवादी लोग बॉम्ब रखते हैं, 4 घंटे बाद फूटेगा, 2 दिन बाद। तो ये बॉम्ब किसी वक्त भी फूट सकता है। और हजारों उदाहरण हैं कि किस प्रकार लोगों ने गीता पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन को सुधारा। जब आप भगवान का प्रचार करते हो, ये नहीं कि हर व्यक्ति आपके साथ चलेगा। उदाहरण के लिए जब चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे नर्मदे में घर घर जाकर, तो कई घरों में वो जाते थे, बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया जाता था। लोग कहते थे संन्यास महात्मा आ गए हैं, बैठो बैठो प्रसाद खाओ। और उनका संदेश क्या था महाप्रभु जी के अनुसार? संदेश था बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। कृष्णा ही आपका धन है, कृष्णा ही आपका प्राण है। तो नित्यानंद हरिदास का आदेश सुनकर हरि नाम का उच्चारण शुरू कर देते और उनका बड़ा जी तरह स्वागत किया जाता। लोग उनको प्रसाद खिलाते थे, फिर वो कहते थे प्रसाद खाने नहीं आए हम, तो आपका संदेश देने आए हैं। तो लोग उस संदेश को स्वीकार करते थे। कई घरों में वो जाते थे, लोग कहते थे ये तो पागल निमाई पंडित के प्रभाव में आ गए हैं। जैसे निमाई पंडित पागल है, हरि नाम कीर्तन करते रहता है, ये भी पागल हमें पागल बनाने आए हैं। निकलो 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 निकलो, नहीं चाहिए। और कई घरों में वो जाते थे तो लोग कहते थे हाँ जासूस आ गए हैं सन्यासी के रूप में, देखेंगे हमारे घर में क्या क्या है, फिर डाकू आ जाएंगे चुराने के लिए। और जब ये आरोप लगाया जाता था तो नित्यानंद हरिदास हंसते थे, और कई घरों में वो जाते थे, लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, कहते थे लोग आपने हमें अंदर आने नहीं दिया जब हमारे थे तो अंदर नहीं आ सकते, उनकी बेइज्जती करते थे। तो आप देख सकते हो इस उदाहरण से कि भगवान नित्यानंद जो कि बालराम के अवतार हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं, और हरिदास जब वो घर घर जा रहे थे हर जगह तो उनका स्वागत नहीं किया लोगों ने, है ना, कईयों ने किया कईयों ने नहीं। तो जब आप भी घर घर जाओगे प्रचार करने के लिए या जिसकी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका स्वागत करेगा, कोई करेगा और कोई नहीं करेगा, पर हम क्यों प्रचार कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए। तो मैं खास आया हूं आप मीरा रोड के भक्तों से ये विनती करने के लिए कि हर साल ग्रंथों के मैराथन की सेवा हम इस्कॉन हर केंद्र करता है, आप भी हर साल करते आए। पिछले साल आप में से कितने भक्तों ने गीता के वितरण की सेवा में सहयोग दिया था, तो अंदाजे से मैं कह सकता हूं जो उपस्थित सज्जन हैं, उपस्थित भक्तजन हैं, उनमें से कोई 20% लोगों ने सहयोग दिया, 20 या 25 जिन्होंने, और 75% लोगों ने नहीं दिया। तो लगता है कि हालांकि आपने हाथ उठाया था और भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, पर आप प्रिय प्रयास करे बिना बनना चाहते हो। तो ये साल ये विनती है, आप सब जुड़िए। पिछले साल आपके मीना रोड के केंद्र ने कितने गीता पाठ में 30,000 गीता पाठी थी, मतलब कि 30,000 लोग गीता पढ़ेंगे प्राप्त करेंगे, और एक गीता को अक्सर 1, 2, 3, 4 व्यक्ति पढ़ते हैं तो 1,00,000 व्यक्ति भी गीता पढ़ेंगे, उनमें से 5-10% लोग भी भक्त बन जाए तो पूरे समाज का नक्शा बदल जाएगा। तो हमारे कई मंदिरों में हम एक प्रिया सभा बहुत उत्साह से सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल कोई 2,500 भक्तों ने मैराथन की सेवा में सहयोग दिया था, 2,500, और ये साल 3,000 से अधिक भक्त, आप जैसे, मैं ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा, आप जैसे जो भक्त घर में रहते हैं नौकरी करते हैं धंधा में, आप सबसे निवेदन है कि आप जुड़िए इस सेवा में। हुज ऑर्गेनाइजिंग यू कामना लोचन वानामानी प्रभु ऑर्गेनाइज करने या बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, आप जुड़ोगे, बांटोगे गीता, और कोई आपकी बेइज्जती करेगा तो, अगर नित्यानंद हरिदास की बेइज्जती हो सकती है हमें तो जूते पहनने चाहिए। नित्यानंद हरिदास को उन्होंने घर से निकाल दिया, तो अगर कोई आपको जूते भी मारे तो सह लेना चाहिए, है कि नहीं, आखिर जूते भी हम खाएंगे तो किसके लिए खा रहे हैं। विश्व के कई देश हैं जहाँ की ग्रंथों का वितरण की हमें इजाजत नहीं है, खास करके मुसलमान देश में, वहाँ इतनी भयंकर स्थिति है, पर जब भी हमारे पास प्रचार कर दे रहे हैं। तो आप सब इस सेवा में जुड़िए, और जैसे आप देख रहे हो ज्यादा गिरधारी का मंदिर बन रहा है तेजी से या नहीं, हाँ, तो आपकी क्या इच्छा है, तेजी से बने या धीमे धीमे बने, हाँ तेजी से, कब तक आप चाहते हो मंदिर का उद्घाटन हो, हाँ रामनवमी, कितने लोग चाहते हैं रामनवमी तक मंदिर तैयार हो जाए, पर आप में से कितने भक्त कुछ सेवा करने को तैयार हो मंदिर बनाने के लिए, हाँ? फिर आप बाद में कह सकते हो हमने सेवा की थी तो ये मंदिर बना, नहीं तो बाद में क्या कहेंगे, मंदिर तो बन गया पर आपका इसमें कुछ हाथ नहीं था। ये जो मंदिर है भगवान का निवास का स्थान है, और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे मंदिर बनाने में सहयोग दे उसे क्या प्राप्त होता है, भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। आप भगवान का मंदिर बनाओगे, प्रभुपाद जी कह रहे थे भगवान आपका घर बनाएंगे, और तो आप सब जुड़िए। हम खास करके नित्यानंद खड़े हो जा रहे हैं,
नित्यानंद
मैं हमारे नित्यानंद माधव दास इधर खड़े हैं, हम इनका खास आभार प्रकट करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सेवा दी है इस मंदिर को तैयार करने में, और अगर इनकी सेवा नहीं होती तो शायद हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। भगवान इनको मात्र बना रहे हैं मंदिर बनाने में। तो आप भागवतम के 10वें स्कंद में ये कथा पढ़ते हो जो आपने पहले भी सुनी होगी कि एक समय एक औरत सेब बेच रही थी, सेब बेचते बेचते भगवान के घर में आई, भगवान अपने हाथों में थोड़े से अन्न रख कर जा रहे थे सेब लेना, और भी उसके बदले में अन्न देने वाले थे, पर अन्न सारा हाथों से गिर गया। जब भी उस औरत ने भगवान की खूबसूरती के प्रति आकर्षित होकर सेब दे दिए, जब उसने मुड़ के देखा तो क्या देखा, टोकरी में क्या थे, कहा करके हम भी दान देंगे फिर हमारी टोकरी में भी सोने के सेवा देंगे। हरे कृष्णा। Many people can't understand the complication part of the story.
Why? Because I have been taught. So, I have been taught.